ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान योजना की 18वीं किश्त जारी की। धमतरी में आज से शुरू हुआ जल जगार महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं देश विदेश के विशेषज्ञ। राजधानी रायपुर में आज से शुरू हुई सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और अबूझमाड़ में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए 31 में से 15 माओवादियों की शिनाख्त की गई, इन पर 1 करोड़ रूपये से अधिक का इनाम घोषित था। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से लगभग 23,300 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त भी जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देशभर में 9,04,00,000 से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने प्रदेश के करीब 25 लाख किसानों के खातों में 566 करोड़ 77 लाख रूपये से अधिक की राशि अंतरित होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। धमतरी में आज से 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव शुरू हो गया है। ये महोत्सव पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय गंगरेल बांध परिसर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में यूनिसेफ, जापान, श्रीलंका के अलावा देश के अनेक जल और पर्यावरणविद भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव के तहत आज अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में देश विदेश के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, विशेषज्ञ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जल संचय और जल संरक्षण पर संवाद किया। उन्होंने जल संचय और जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने अपने क्षेत्रों के सफल कार्यों की कहानी साझा की। इस दौरान जल संरक्षण के प्रभावी उपायों पर गहनता से विचार विमर्श करने के साथ ही धरातल पर उतारने की कार्ययोजना भी तय की गई। सम्मेलन को प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्मश्री पोपटलाल पवार, श्याम सुंदर पालीवाल और उमाशंकर पांडे, अर्थशास्त्री और शहरी विकास विशेषज्ञ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अपर सचिव अर्चना वर्मा ने संबोधित किया। जल जगार महोत्सव के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। टूरिस्ट गार्ड माधव सिंह ने वाटर बैलेंसिंग स्पोर्ट्स में भाग लेकर जल ओलंपिक की शुरुआत की। इस अवसर पर कयाकिंग, स्विमिंग, बनाना राइड, फ्री स्टाइल स्विमिंग, फ्लैग रेन, थ्रो रो और रिवर क्रॉसिंग जैसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जल जगार महोत्सव में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें खादी ग्रामोद्योग सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। जल जगार महोत्सव के तहत आज आयोजित कार्निवल में विभिन्न स्कूल के बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे संदेश दिए। राजधानी रायपुर में आज से सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी शुरू हो गई है। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस सैन्य प्रदर्शनी में T-90 भीष्म टैंक, वायु रक्षा प्रणाली, लाइट फील्ड गन जैसे युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सेना के आधुनिक हथियार तथा उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी के दौरान सैनिकों द्वारा पैरा जम्पिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिल राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को भारतीय सेना की क्षमता और उसके कौशल से परिचित कराना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय सेना अपनी अद्वितीय दक्षता और अनुशासन के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। जब जब देश पर संकट आया, हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश की रक्षा की है। उन्होंने युवाओं से अग्निवीर के रूप में भर्ती होने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत और ब्रिगेडियर अमन आनंद भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह सैन्य प्रदर्शनी 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी को एक दिन और आगे बढ़ाने की घोषणा की। अब यह प्रदर्शनी 7 अक्टूबर तक चलेगी। ये प्रदर्शनी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले साल में भी सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने आज रायपुर स्थित युवा आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ ही मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, टंकराम वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और वे इस उद्देश्य के लिए युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कल हुई मुठभेड़ में मरने वाले माओवादियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले दंतेवाड़ा में हुई एक पत्रकार वार्ता में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि नारायणपुर दंतेवाड़ा की सीमा पर दक्षिण अबूझमाड़ इलाके में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए 31 माओवादियों में से 15 की पहचान कर ली गई है। इन माओवादियों पर 1,30,00,000 रूपये का इनाम घोषित था। आईजी ने बताया कि मारे गए माओवादियों में 13 महिला माओवादी भी शामिल हैं। घटनास्थल से LMG राइफल, 4 AK-47, SLR, इंसास और कैलिबर राइफल के अलावा कई अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ को लेकर बीती रात उच्च स्तरीय बैठक ली। श्री साय ने माओवादियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों के शौर्य और अदम्य साहस की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। श्री साय ने पुलिस महानिदेशक को माओवाद के खिलाफ ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जवानों के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने दृढ़ संकल्पित है। वहीं मुठभेड़ में घायल एक जवान को राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीती देर रात अस्पताल पहुंचकर घायल जवान का हालचाल जाना। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आगामी 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री राज्य में माओवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देंगे। सक्ती जिले की मालखरौदा पुलिस ने फर्जी भारतीय स्टेट बैंक संचालित करने और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अनिल भास्कर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दुमहानी का रहने वाला है। उसके पास से एक कार और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं बैंक खाते में रखे 83,000 रूपये को सीज कर दिया गया है। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत आज फूल रथ की पहली परिक्रमा होगी। जगदलपुर में फूलों से सुसज्जित विशालकाय रथ में मां दंतेश्वरी देवी के छत्र को पूजा अर्चना के बाद जगन्नाथ मंदिर ले जाया जाएगा। इसके बाद पुलिस दल द्वारा हर्ष फायर कर माई जी को सलामी दी जाएगी और फिर फूल रथ की परिक्रमा शुरू होगी। फूल रथ की परिक्रमा अगले 5 दिनों तक यानी नवरात्रि की सप्तमी तिथि तक चलेगी। बस्तर दशहरे के तहत कल जोगी बिठाई की रस्म अदा की गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस मौके पर श्री साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में तेजी लाने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुंगेली जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS द्वारा आयोजित पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल हुए। खाद्य विभाग ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कस्टम मिलिंग के लिए दिए गए चावल को जमा नहीं करने वाले 3 राइस मिल संचालकों के यहां छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 27,575 क्विंटल धान जब्त किया गया। वहीं एक राइस मिल से 225 क्विंटल चावल भी जब्त किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र बस्तर संभाग रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश तट से दूर ऊपरी हवा में एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर बदली बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान योजना की 18वीं किश्त जारी की। धमतरी में आज से शुरू हुआ जल जगार महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं देश विदेश के विशेषज्ञ। राजधानी रायपुर में आज से शुरू हुई सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और अबूझमाड़ में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए 31 में से 15 माओवादियों की शिनाख्त की गई। इन पर 1 करोड़ रूपये से अधिक का इनाम घोषित था। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।